आज है 4 मार्च दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। जमानत पर रिहा हुए जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार हुए पहली बार मीडिया से मुखातिब।
सरकार जब फेलोशिप बंद करेगी तो फेलोशिप शुरू करवाने की लड़ाई शुरू कर देंगे। सरकार अगर कभी रोहित बेमुला की हत्या कर देगी तो उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाएंगे।
चुनाव आयोग ने की 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की घोषणा। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष पीए सांगमान नहीं रहे। उर्दू साहित्य की महानतम हस्ती फिराक गोरखपुरी की पुण्यतिथि पर आज याद करेंगे उन्हें विवेचना में।
कॉफी हाउस में ये आलम होता था कि फिराक साहब जो कॉफी हाउस पहुंच जाएं तो सारी मेजें घसीट के लोग एक लंबी एक कतार सी बन जाती थी और दोनों तरफ लोग बैठे हुए फिराक साहब की बातें सुन रहे हैं।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार कल जेल से रिहा होने के बाद सुर्खियों में छाए हुए हैं। जेएनयू में आज पत्रकारों से बातचीत उन्होंने की और कहा कि उनका अफजल गुरु आदर्श नहीं है बल्कि उनका आदर्श रोहित वेमुला है। कन्हैया कुमार ने कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते और ना ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो फेलोशिप के लिए लड़ाई हो या दलितों के हक की लड़ाई, संविधान के दायरे में लड़ते रहेंगे। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार को 2015 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 78 वर्षीय मनोज कुमार को फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड पाने वाले 47वीं शख्सियत हैं। पूरब पश्चिम, उपकार, क्रांति जैसी यादगार फिल्में कर चुके मनोज कुमार को 5 सदस्यीय ज्यूरी में आम सहमति से चुना गया। ज्यूरी में लता मंगेशकर, आशा भोसले, सलीम खान, नितिन मुकेश और अनूप जलोटा शामिल हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया में युद्ध विराम का पालन करने की पुष्टि की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर यूरोपीय नेताओं से बात की है, जिसके बाद एंगेला मर्कल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने एक साझा प्रेस वार्ता की। इसमें एंगेला मर्कल ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष युद्ध विराम का पालन करें। रूस के राष्ट्रपति ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सीरिया में युद्ध विराम की सहमति का पालन करना चाहिए। सिर्फ दाएश यानी इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा फ्रंट पर हमले किए जा सकते हैं। हमने रूस से भी कहा है कि वो असद सरकार पर भी युद्ध विराम का समर्थन करने का दबाव बनाए और अलप्पो की स्थिति पर भी ध्यान दे। ये थे एंगेला मर्कल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अदन शहर के एक वृद्धाश्रम में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियां चलाई हैं, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 भारतीय नन भी शामिल हैं। हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। सऊदी अरब समर्थित यमन की सरकार का कामकाज अदन से चलाया जा रहा है। अदन में चरमपंथी संगठन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ने हमले तेज कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन 5 राज्यों में अप्रैल और मई में मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन राज्यों के 824 विधानसभा क्षेत्रों में 17 करोड़ मतदाता हैं। नसीम जैदी ने कहा कि इन चुनाव में पहली बार ईवीएम में नोटा के लिए चिन्ह मौजूद होगा और ईवीएम में सभी उम्मीदवारों के चित्र भी दिखेंगे, ताकि मतदाताओं में किसी तरह के भ्रम की स्थिति न पैदा हो। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कन्हैया कुमार से। जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार जमानत पर रिहा होने के बाद आज पहली बार औपचारिक तौर पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, अफजल गुरु मेरे आदर्श नहीं बल्कि रोहित वेमुला हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक छात्र हूं, मेरा काम पढ़ाई करना है, लेकिन इस दौरान जो भी मुद्दे आएंगे मैं उन्हें उठाऊंगा, उनके लिए लड़ूंगा। कन्हैया कुमार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जमानत पर कल रिहा किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सहयोगी विनीत खरे भी मौजूद थे और वो हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो जेएनयू में ही फिलहाल मौजूद हैं। क्या क्या मुख्य बातें कही कन्हैया कुमार ने विनीत?
सुशीला, अभी हम जो जेएनयू का जो एडमिन कैंप एडमिन ब्लॉक है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जहां पर ज्यादातर प्रदर्शन होते हैं, हम वहीं बगल में खड़े हुए हैं। हमसे बोला गया है कि कन्हैया कुमार मीडिया से वन ऑन वन इंटरव्यूज दे रहे थे, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी भी कुछ छात्र मौजूद हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। करीब 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कन्हैया कुमार ने वही कई सब बातें जो वो कल उन्होंने यहाँ पर एक फायरी स्पीच दी थी जो जेएनयू के छात्र थे उनके सामने, उन्हीं की कोई कई बातों को रखा उन्होंने। और प्रेस के काफी लोग आए हुए थे और उनसे कई बातें उन्होंने रखी जो उनसे भाजपा पर या फिर आरएसएस पर या फिर प्रधानमंत्री पर जो हमले उन्होंने कल भी किए थे वो आज भी उन्होंने जारी रखे। पत्रकार जानना चाह रहे थे कि जो पैम्फलेट छपा था उस पर उनकी क्या राय है और अफजल गुरु की फांसी को लेकर उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि वो एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि उनके पैम्फलेट में अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग कहा गया है तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तो इस पर कहा।
जेएनयूएसयू प्रेसिडेंट के बतौर अगर आप कहते हैं कि अफजल गुरु आपके लिए कौन है, तो मैं कहता हूँ कि अफजल गुरु भारत का भारतीय संविधान के अनुसार इस देश का एक नागरिक था, अखंड भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर उसका एक निवासी था और उसको कानून ने सजा दी है। जो सजा दी है उस सजा के ऊपर बोलना, वही कानून इस देश की जनता को इजाजत देता है। जो लोग कर रहे हैं ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है, मेरे लिए आइकन आज के समय में रोहित बेमुला है।
ये थे कन्हैया कुमार। कई पत्रकार वो कन्हैया कुमार के जवाब से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने बार बार उनसे पूछा कि जो पैम्फलेट में कहा गया या फिर अफजल गुरु की फांसी पर उनकी क्या राय है, तो वो थोड़ी बचाव की मुद्रा में नजर आए और वो कोई भी बात ऐसी नहीं कहना चाह रहे थे जो उन्हें उनके लिए बाद में परेशानी खड़ी करे। एक और पत्रकार ने उनसे पूछा कि ऐसी खबरें आई हैं कि वही सीताराम येचुरी का ऐसा कथित तौर पर बयान आया है कि वो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उसमें वो प्रचार कर सकते हैं, और इस पर कन्हैया कुमार का कहना था,
मैं विद्यार्थी हूँ, मेरा काम पढ़ाई करना है और मेरी तरह हर लोग अपनी पढ़ाई कर सके इसके लिए लड़ाई लड़ना है, तो इसके लिए ना कोई प्लान करने की जरूरत है ना कोई एक्शन बनाना है। सरकार जब फेलोशिप बंद करेगी तो फेलोशिप शुरू करवाने की लड़ाई शुरू कर देंगे। सरकार अगर कभी रोहित बेमुला की हत्या कर देगी तो उसको न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाएंगे। राजद्रोह के आरोप में किसी को जेल में डाल देगी तो उसे रिहा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और हमें लगता है कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, इसीलिए कोई विक्ट्री नहीं है, इसीलिए यूनिटी है।
तो कन्हैया कुमार कह रहे थे कि लड़ाई लंबी है और मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये थे जेएनयू से बीबीसी संवाददाता विनीत खरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का कहना था कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में अप्रैल और मई में मतदान कराए जाएंगे। उनका कहना था कि इस चुनाव के नतीजे 19 मई को आएंगे। नसीम जैदी का कहना था कि चुनाव आयोग ने इन चुनावों को लेकर खास इंतजाम किए हैं। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए बात की हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव से।
देखिए, खुद नसीम जैदी ने आज इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन 5 राज्यों में 4 अप्रैल से 16 मई के बीच मतदान कराया जाएगा और उन्होंने ये भी बताया कि मतगणना का काम सभी राज्यों में एक साथ 19 मई को होगा। असम में 2 चरण में मतदान होंगे 4 और 11 को। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में 16 मई को मतदान एक तरह से निपटा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कुल 6 चरणों में मतदान कराया जाएगा। इस पर सुशीला काफ़ी राजनीति भी चल रही है जब से ये घोषणा हुई है। लेकिन जो खास बात सुशीला आज की इस घोषणा में रही है वो ये रही है कि खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने ये कहा कि इन राज्यों में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर हिंसा का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है।
Some polling states have very high incidence based on the past record of abuse of money.
तो जैदी साहब यही कह रहे थे कि इन राज्यों में हिंसा का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है और उनका ये कहना था कि इसके लिए तमाम तरह के केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, ये समझिए कि आज से ही शुरू हो जाएगी। 2 दिन में उनके मुताबिक तमाम जो सुरक्षा बल है वो अपने अपने जगहों पर पहुंच जाएंगे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए। ये मान के चलिए जो आज घोषणा हुई है कि 5 राज्यों में कुल 824 सीटें हैं जिन पर जिनके लिए चुनाव होगा, और 17 करोड़ से ज़्यादा मतदाता, काफ़ी घनी आबादी वाले राज्य भी हैं इसमें, जैसे पश्चिम बंगाल है या असम में, वहाँ पर 17 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस घोषणा के साथ साथ जो जो एक बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी पहली बार ये बात देखने को मिली कि खुद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने जो ब्यूरोक्रेसी है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इन तमाम राज्यों से, उनसे कहा है कि वो न्यूट्रल रहें, यानी कि वो किसी का पक्ष न लें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो उन पर एक तरह से जो निगरानी रखने का तरीका है वो भी जारी रखेंगे।
As you know, from today onward, entire bureaucracy of these five states which are connected with the election work will be on deputation.
तो ये तो रही ब्यूरोक्रेसी और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे जो उम्मीद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। लेकिन एक जो और आखिरी बात बताना चाहूँगा वो ये है कि इस बार नोटा का ऑप्शन रहेगा, यानी नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब कि पहली बार इन विधानसभा चुनावों में इन राज्यों में अगर आप मतदाता हैं और आप किसी को भी नहीं मत देना चाहते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। साथ ही इन चुनावों में पहली बार जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जो ईवीएम्स हैं, उसमें पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ साथ जो उम्मीदवार है उनका नाम भी रहेगा और उनकी तस्वीर भी देखने को मिल सकेगी।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा, ये थे नितिन श्रीवास्तव। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीए सांगमा का निधन हो गया है। मेघालय मूल के पीए सांगमा की गिनती न सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी बल्कि उन्होंने अपने राज्य के लिए भी काफ़ी काम किया। कांग्रेस को छोड़ नई पार्टी बनाने का साहस दिखाया और प्रणब मुखर्जी के बरक्स 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा। एक श्रद्धांजलि।
आई थिंक वी मस्ट गो फॉर स्मॉलर स्टेट्स। I am in favor of smaller states.
8 बार लोकसभा सदस्य रहे पीए संगमा की मौजूदगी और दोस्ताना लेकिन दृढ़ आवाज की सदन के गलियारों को आदत सी हो गई थी। आज जब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नम स्वर में सदन को उनके आकस्मिक निधन की सूचना दी तो पूरा सदन सकते में आ गया।
I have to inform the house of the sad demise of Sri P.A. Sangma.
लोकसभा अध्यक्ष ने संगमा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अपनी बात मधुरता लेकिन दृढ़ता से कैसे रखी जाए ये उन्होंने संगमा से ही सीखा।
एक और बात मैं अपनी तरफ से कहूँ, हंसते उस्ते सदन कैसे चलाना, ये मैंने एक प्रकार से माननीय संगमा जी से सीखा, ऐसा कहो तो गलत नहीं होगा।
यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले संगमा 1977 में पहली बार लोकसभा सीट के लिए चुने गए। 1988 से 1990 तक वो मेघालय के मुख्यमंत्री रहे और 1996 से 1998 तक लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा,
बतौर लोकसभा अध्यक्ष श्री संगमा का कार्यकाल अविस्मरणीय है। अपनी सादी शख्सियत और मधुर भाषी स्वभाव से वो बहुत लोकप्रिय भी थे। उत्तर पूर्व के विकास में उनका योगदान अहम और सराहनीय है।
पीए सांगमा इस मायने में अन्य राजनेताओं से अलग थे कि उन्होंने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का होने के विवाद पर कांग्रेस छोड़ी और शरद पवार के साथ मिलकर नई पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP का गठन किया। हालांकि इस फैसले से उनके राजनीतिक जीवन में कुछ ठहराव आया लेकिन वे अपने सिद्धांत पर अडिग रहे। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद वे अपनी व्यवहार कुशलता से अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों में भी काफी पसंद किए जाते थे। संसद सदस्य शशि थरूर।
He was a very popular figure, whatever the political differences of opinion people may have had with him.
वो बहुत ही लोकप्रिय थे, चाहे जो भी राजनीतिक मतभेद हों, वो सबसे मधुरता से पेश आते थे। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा, वो संसद की कार्यवाही हंसते हंसते निपटाते थे, कहीं कोई कड़वाहट नहीं।
बीजेपी के नेता नितिन गडकरी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि विरोधी दल का सदस्य होने के बावजूद वे उनसे निजी स्तर पर बातचीत करते रहते थे।
बहुत अच्छे इंसान थे, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे और व्यक्तिगत रूप से हर बार काफी समस्याओं को लेकर मेरी उनकी चर्चा होती रहती थी और इसलिए उनका इस प्रकार से जाना हमारे देश के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा आघात है।
आज जब द्वेष की राजनीति ज्यादा चलन में नजर आती है, पीए संगमा का यूं चले जाना बेशक खलेगा। वो उन चंद नेताओं में से एक थे जो अपनी आस्थाओं और सिद्धांतों पर अटल रहने के बावजूद विरोधी विचारधाराओं और विरोधियों के प्रति भी उदार रवैया रखते हैं। यही लोकतंत्र की खासियत होती है और लोकतंत्र को पोषित करने में मददगार भी।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी ए सांगमा नहीं रहे। और अब समय है विवेचना का। फिराक गोरखपुरी को उर्दू साहित्य की महानतम हस्तियों में से एक माना जाता है। जोश मलिहाबादी उन्हें मीर तकी मीर और गालिब के बाद उर्दू का सबसे बड़ा शायर मानते थे। उर्दू साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को दिया गया था। उनकी पुण्यतिथि पर फिराक की शख्सियत को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
हर साज से होती नहीं यह धुन पैदा, होता है बड़े जतन से यह गुण पैदा। वीरान नशा तो हमने सदियों चुलकर, होता है हयात में तवाज़ुन पैदा।
ये आवाज है उस शख्स की जिसे उर्दू शायरी का डोएन माना जाता है। फिराक की शख्सियत में इतनी परतें थीं, इतने आयाम थे, इतना विरोधाभास था और इतनी जटिलता थी कि वो हमेशा से अध्येताओं के लिए एक पहेली रहे हैं। फिराक बोहेमियन थे, आदि विद्रोही, धारा के विरुद्ध तैरने वाले बागी। अदा अदा में अनोखापन, देखने बैठने उठने चलने अंदाजे गुफ्तगु का अलग अंदाज, बेतहाशा गुस्सा, अपार करुणा, शर्मनाक कंजूसी और बर्बाद कर देने वाली दरिया दिली, फकीरी और शाहाना जिंदगी का अद्भुत संगम, ये थे रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस शमीम हनफी फिराक के नजदीकी लोगों में से रहे हैं। हनफी कहते हैं कि साहित्य की बात एक तरफ, उन्होंने फिराक से बेहतर बात करने वाला अपने जीवन में नहीं देखा।
मैंने फिराक साहब से बेहतर कन्वर्सेशनलिस्ट नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने बहुत बड़े मुमताज़ लोगों के साथ, लिखने वाले उर्दू के, हिंदी के, अंग्रेज़ी के, दुनिया के, बल्कि मैं बहुत से लोगों से मुझे इत्तफाक़ हुआ उनको देखने का या उनसे मिलने का, लेकिन फिराक साहब के कन्वर्सेशन का जो अंदाज़ था, मुझे सिर्फ एक शख्स याद आता है उनके साथ, अब वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिनको एक बॉसवेल मिल गया था जिसने उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की पूरी। और ज़ाहिर है कि बॉसवेल की तरह अगर फिराक साहब के साथ भी कोई ऐसा शख्स होता जो उनकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लेता, तो उनकी जहानत का और उनकी जिंदा दिली का, उनके मिजाज की शगुफ्तगी का, उनके तखय्युल की उड़ान का, और कहना चाहिए कि जो उनके यहाँ एक जरखेज़ी थी, एक फर्टिलिटी थी उनकी बातचीत में, इमेजिनेशन में, इन सब चीज़ों का बेहतर इजहार जो हुआ है वो उनकी गुफ्तगू में हुआ है। अफसोस है मुझे कि उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हुई, वरना ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो सकती थी हमारे ज़माने का।
ब्रिलियंट लिटरेचर के माने आप ऐसे शब्दों का एग्जा कर दे रहा ना समझिए जो कॉमन मैन नहीं बोलता। तो ये जो हिंदी के लोगों को हम जब शिकायत कर देते हैं कि मुश्किल लिखते हो, तो कहते तो क्या तरकारी खरीदने की भाषा लिखे, ये नहीं जानते कि बड़ा साहित्य तरकारी ही खरीदने की भाषा में होता
है। दिलचस्प बात ये थी कि फिराक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया करते थे। हिंदी साहित्यकारों से उनकी शिकायत थी कि वो ऐसे शब्द क्यों लिखते हैं जो सिर्फ कोशों में दफन रहते हैं, उनकी भाषा जनमानस के करीब क्यों नहीं होती। जाने माने हिंदी साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी को उनको नजदीक से जानने का मौका मिला था।
उन दिनों फिराक साहब रिटायर हुए थे, पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में। मैंने जाकर ढूंढा तो उनको, वो अपने क्लास ले रहे थे फिराक साहब। ज्यादातर उनको बीए क्लासेस मिलते थे, एमए क्लासेस उनको देव साहब नहीं देते थे, क्योंकि क्लास में जाकर कि फिर वो शायरी वाली बातें ज्यादा करते थे, कोर्स वोर्स कम पढ़ाते थे, इधर उधर की बातें करते थे। तो मैंने देखा कि वो सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीते हुए वो घूम घूम के पढ़ा क्या रहे, ऐसे कुछ बातें कर रहे हो विद्यार्थियों से। तो कोई टीचर क्लास में सिगरेट पीता हुआ और घूम घूम के पढ़ाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो कुछ दिन के बाद मैं तो फिराक साहब के घर गया, सुबह का वक्त था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं फिराक साहब से मिलना चाहता हूँ। तो उनका जी हाँ रफर से आए फिराक, मैं हूँ, आइए तशरीफ लाइए। पूछे कहाँ से आए हो, मैंने कहा मैं बनारस से आया हूँ। क्या पढ़ते हो, हिंदी पढ़ता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ, बोले साहब कुछ हिंदी में सरल सुगम पंक्तियाँ सुनाइए कविता की। तो मैंने सुनाई, अब उन्होंने बड़ी खींचतान शुरू की। ये वही की पहली मुलाकात रही, उन्होंने हिंदी वालों को बड़ी गालियां देनी शुरू की। कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा कि सब हिंदी वाले ऐसे होते हैं, उन्होंने एक खास तरह का शब्द इस्तेमाल किया विशेषण, जो मैं यहाँ नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा साहब देखिए, आप सबको गाली दीजिए, लेकिन आप मेरे गुरु आचार्य हजारी प्रसाद देवी को गाली मत दीजिए। उन्होंने तब भी गाली दी उनको। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फिराज साहब मैं आपको ढेला मार के भागूंगा और आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे अगर आपने गाली दी द्विवेदी जी को। तो जब मैं उनसे कहा तो फिराज साहब ने क्या किया, आए मेरे पास, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़े जोर से हंसे। अरे बोले पंडित जी, तुम तो असली हिंदी वाले मालूम पड़ते हो।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के बारे में फिराक कहा करते थे कि उनके एक पेज पर 10-10 बार भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग, ऐसा लगता है जैसे एक साथ बहुत सी मक्खियां भिन भिना रही हैं। हिंदी साहित्यकारों में सिर्फ निराला से उनकी बनती थी। फिराक के अजीज दोस्त और साहित्य सचिव रहे रमेश चंद द्विवेदी अपनी किताब मैंने फिराक को देखा था में लिखते हैं,
फिराक की पत्नी मुझे बताती थी कि फिराक और निराला में दोस्ती तो थी लेकिन जमकर लड़ाई भी होती थी। बाबूजी नौकर से निराला के लिए रिक्शा मंगवाते और गेट तक उन्हें छोड़ने जाते। वो रिक्शे वाले को पैसा पहले ही दे दिया करते थे। बाबूजी खुद ही निराला से कविता सुनाने के लिए जिद करते और जब निराला जी कविता पढ़ना बंद कर देते तो बाबूजी उनकी कविता में खामियों का बयान करते। निराला जी पहले तो सुनते और फिर जब उनसे न रहा जाता तो बरस पड़ते और फिर तो छतें हिलने लगती। एक बात और मजेदार है, कभी कभी निराला जी अंग्रेजी में लड़ाई लड़ते लेकिन फिराक उनका जवाब हिंदी में देते थे। जब भी निराला आते, नौकर को भेजकर एक बोतल महुए की शराब मंगाई जाती। निराला जी के लिए कोरमा, कबाब, भुना हुआ गोश्त, पुलाव, मिठाइयाँ सब कुछ रहता। फिराक अंदर आकर बार बार चिल्ला जाते, खबरदार कुछ कम न पड़ने पाए।
फिराक जवाहरलाल नेहरू की बहुत इज्जत करते थे। 1948 में जब नेहरू इलाहाबाद आए तो उन्होंने फिराक को मिलने के लिए आनंद भवन बुलवा भेजा। फिराक के भांजे अजय मान सिंह, उन पर लिखी किताब फिराक गोरखपुरी द पोएट ऑफ पेन एंड एक्सटेसी में लिखते हैं,
फिराक को उस समय बहुत बेइज्जती महसूस हुई जब रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा कि आप कुर्सी पर बैठें और अपना नाम पर्ची पर लिख दें। इसी आनंद भवन में उन्होंने 4 सालों तक नेहरू के साथ काम किया था। इस बार नेहरू पहली दफा प्रधानमंत्री के तौर पर इलाहाबाद आए थे और उन्होंने फिराक को बुलवा भेजा था। फिराक ने पर्ची पर लिख दिया रघुपति सहाय। रिसेप्शनिस्ट ने दूसरी स्लिप पर आर सहाय लिख कर उसे अंदर भिजवा दिया। 15 मिनट इंतजार के बाद फिराक साहब के सब्र का बांध टूट गया और वो रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाए, मैं यहाँ जवाहरलाल के निमंत्रण पर आया हूँ, आज तक मुझे इस घर में रुकने से रोका नहीं गया है। बहरहाल जब नेहरू को फुर्सत मिले तो उन्हें बता दीजिएगा मैं 8/4 बैंक रोड पर रहता हूँ। ये कहकर वो जैसे ही उठने के हुए, नेहरू ने उनकी आवाज़ पहचान ली। वो बाहर आकर बोले, रघुपति तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं आ गए? फिराक ने कहा, घंटों पहले मेरे नाम की स्लिप आपके पास भेजी गई थी। नेहरू ने कहा, पिछले 30 सालों से मैं तुम्हें रघुपति के नाम से जानता हूं, आर सहाय से मैं कैसे समझता कि ये तुम हो। अंदर आकर फिराक नेहरू के स्नेह से बहुत अभिभूत हुए और पुराने दिनों को याद करने लगे, लेकिन एकदम से वो चुप हो गए। नेहरू ने पूछा, तुम अभी भी नाराज हो? फिराक मुस्कुराए और शेर से जवाब दिया, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें।
इसी तरह नेहरू एक बार इलाहाबाद के सेनेट हॉल में भाषण दे रहे थे।
पंडित जी अपने भाषणों में अक्सर विश्व इतिहास की घटनाओं का जिक्र कर ही बैठते थे। भाषण जैसे ही पूरा हुआ, मशहूर इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उठ खड़े हुए और पंडित जी की भूल बताते हुए कहने लगे कि फला वाकया इस सन में नहीं उस सन में हुआ था। फिराक से भी रहा नहीं गया, वो खड़े होकर अपनी भरपूर आवाज में चीख पड़े, सिट डाउन ईश्वरी, You are a cramer of history and he is a creator of history.
फिराक गोरखपुरी अक्सर इलाहाबाद के कॉफी हाउस में बैठा करते थे और उनके चारों तरफ उन्हें सुनने के लिए लोग घेर कर बैठ जाते थे।
खाना वाना खाने के बाद वो कॉफी हाउस के का रास्ता लेते थे। जमाने में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस, बड़े बड़े वकला, इतने बड़े वकील थे पूरी दुनिया में जिनकी, पूरे हिंदुस्तान में जिनकी शोहरत थी, और वो लोग आते। फिर एक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस। कॉफ़ी हाउस में ये आलम होता था कि फिराक साहब जो कॉफ़ी हाउस पहुंच जाएं तो सारी मेज़ें घसीट के लोग एक लंबी एक कतार सी बन जाती थी और दोनों तरफ लोग बैठे हुए फिराक साहब की बातें सुन रहे हैं। उसमें फिराक साहब की बहसें भी होती, कभी कभी लड़ाई भी होती थी। जाहिर है कि वहाँ 2-3 घंटे अपने फिराक साहब के लिए वक्त गुजारना आसान नहीं था। अपनी ज़िंदगी की तन्हाई का, अपने घर के सन्नाटे का उनको बहुत शदीद एहसास था, तो वो अपना वक्त लोगों में गुजारना चाहते थे।
उन कदमों की आहट जा
एक बार फिराक के साथ एक मजेदार घटना हुई जो बताती थी कि वो कठोर होने के साथ साथ कितने विनम्र भी हो सकते थे।
एक बार जब फिराक साहब दिल्ली गए तो सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी कर्नल खां के यहाँ ठहरे। कुछ सालों बाद वही कर्नल उनके इलाहाबाद वाले घर पर तशरीफ लाए। फिराक उन्हें पहचान नहीं पाए। जब कर्नल ने उन्हें बताया कि वो दिल्ली से आए हैं तो फिराक ने उनसे पूछा, क्या आप वहाँ किसी कर्नल खां को जानते हैं? कर्नल ने कहा, मैं वही शख्स हूँ जिसके साथ आप एक हफ्ते दिल्ली में ठहरे थे। फिराक ने उनसे कहा, आप दरवाजे के पास पड़ी चप्पल उठाइए। हतप्रभ कर्नल ने चप्पल उठा ली और पूछा, मैं इसका क्या करूं? फिराक ने उनके सामने अपना सिर झुकाया और कहा, मेरी गुस्ताखी के लिए मेरे सिर पर ये चप्पलें आप तब तक मारते रहिए जब तक आप थक न जाएं। मैं इतना अभद्र कैसे हो सकता हूं कि आपकी मेहमान नवाजी भूल जाऊं?
फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है, फिराक एक नई सूरत निकल तो सकती है, वो आँख कहती है दुनिया बदल तो सकती है, कड़े है कोस बहुत मंजिले मुहब्बत के, कड़े है कोस बहुत मंजिले मुहब्बत के,
क्या बात है,
मिले न छांव मगर धूप ढल तो सकती है।
86 वर्ष की आयु में जब वो बीमार पड़े तो उन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें देखने दो बार एम्स गईं। उन्होंने इंदिरा गांधी से शिकायत की, ये लोग मुझे सिगरेट नहीं पीने देते। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा, आप ठीक हो जाइए तब आप जितनी मर्जी हो उतनी सिगरेट पीजिएगा। फिराक उस बीमारी से उबर नहीं पाए और 3 मार्च 1982 को इस दुनिया को अलविदा कह गए।
टेढ़ थी उनकी शख्सियत में, लेकिन एक बहरहाल एक बड़ी भारी भरकम, लेकिन ये कि एक बड़ी अनयूजुअल शख्सियत थी उनकी, गैर रस्मी शख्सियत थी, आम इंसानों जैसी नहीं थी। वो बातें भी करते थे तो उनकी, चाहे वो दाल के दाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि बाजार में किस भाव मिल रही है जैसे, लेकिन उसमें भी वो एक इमेजिनेशन उनका था। वो ऐसी गुफ्तगू करते थे कि आप भूल जाएंगे कि ये बाजार के मोल भाव पर दाम पर कर रहे हैं। वो उस गुफ्तगू में एक फलसफियाना, एक कहना चाहिए दानिश्वराना एक तरह का एंगल भी पैदा कर देते थे।
रेहान फतल, बीबीसी दिल्ली।
आप ये विवेचना कल सुबह 8 के कार्यक्रम में विश्व भारती में दोबारा सुन सकते हैं। और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कहा कि उनका आदर्श अफजल गुरु नहीं है बल्कि रोहित वेमुला उनके आदर्श हैं। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार को 2015 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने अमरीकी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी पर नज़र रखने वाले आयोग को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। यमन में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अदन में एक वृद्धाश्रम पर हमले में 16 लोगों की मौत हो गई जिनमें 4 भारतीय नन शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे घटना चक्र में 9:30 फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त।